नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
मित्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और प्रेमी नाम में आपको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने रेडियो को खोलकर बैठे हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। मित्रों, इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक से अपना अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में मत्ती रचित सुसमाचार को आरंभ किया था और हमने इसके पहले अध्याय में यीशु की वंशावली, यीशु का कुंवारी से जन्म होना और उसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, इन्हीं मुख्य बातों को देखा था। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। मित्रों, इस अध्याय में हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे कि प्रभु यीशु के जन्म के पश्चात ज्योतिषियों का आना, मिस्र में जाना और वापस नासरत को लौटना। लेकिन सबसे पहले हम भविष्यवाणी की पूर्णता पर यानी पूरी होने पर विचार करेंगे। मित्रों, जो भी घटना घटी है उसका ऐतिहासिक लेख है, परंतु इसके पीछे एक महान सच्चाई को प्रस्तुत किया गया है और हम उसे खोना नहीं चाहते हैं। हमने पहले कहा था कि प्रत्येक सुसमाचार लोगों की आवश्यकताओं को या विशेष समूह की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है और मत्ती रचित सुसमाचार इसराइल राष्ट्र या जाति को लिखा गया है या धर्मी लोगों के लिए है। यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वे चार भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो गई हैं। प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा पुराने नियम के ये भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इसी को बतलाना या दिखाना ही इस अध्याय का उद्देश्य है। मुझे पूरा भरोसा है कि यीशु मसीह के दिनों में भी बहुत से शास्त्र को पढ़ने वाले ईमानदार विद्यार्थी थे जो अचंभित हो रहे थे कि ये भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो सकती है। ऐसा लगता था कि यह मुश्किल या कठिन है, अन्यथा असंभव है। मैं उनको यहाँ पर सूचीबद्ध कर रहा हूँ, तब हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जन्म के समय वे कैसे पूरे हो गए। पहला, मीका 5 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार उसे बैतलहम में पैदा होना था। दूसरा, होशे 11 अध्याय उसके 1 पद के अनुसार वह मिस्र से बुलाया जाएगा। तीसरा, यर्मिया 31 अध्याय उसके 15 में देखें तो रामा में विलाप होगा। और चौथा, यशाया 11 अध्याय के 1 पद में हम देखते हैं कि वह ईशे की ठूंट में से एक अंकुर था जो नाजिर कहलाया। मित्रों, जबकि मसीह का जन्म बैतलहम में होना है तो रामा में विलाप की क्या जरूरत है, जबकि यह यरूशलेम के पूरे क्षेत्र में और बैतलहम यरूशलेम के दक्षिण में है। यद्यपि यह बैतलहम में जन्म लेगा और मिस्र से बुलाया जाएगा, फिर भी उसे नाजरत कहा जाएगा। प्रश्न यह है कि कैसे ये सभी भविष्यवाणियां इस बालक से पूर्ण होंगी। अच्छी बात है, लेकिन मत्ती इसे दिखाते हैं कि कैसे हूबहू या बिल्कुल सही और आसानी से सभी भविष्यवाणियां बिना किसी तनाव के पूर्ण हो गई और न ही भविष्यवाणी या इतिहास को कोई क्षति पहुंचाई गई। जैसा परमेश्वर ने कहा था या वैसे ही हो गया। मित्रों, हमारे दिनों में कुछ निश्चित भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित हैं। हमारे लिए इसे उसके साथ जोड़कर देखना थोड़ा कठिन हो सकता है, वे कैसे पूर्ण होंगी। मेरा मानना है कि हम उस समय की ओर आ रहे हैं जब यह पद पूर्ण हो जाएगी और हम यह भी देखने जा रहे हैं कि सब कुछ स्वाभाविक तरीके से ही पूर्ण होगी। यह हमें यहाँ पर एक छोटी पहले जैसे लगती है, परंतु जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे तो ये सब कुछ पूरी हो जाएगी। यह सब उसके पहले आगमन की भविष्यवाणियों की तरह ही स्वाभाविक होगा। प्रत्येक छोटी पहले की कड़ी अपने स्थान पर ठीक बैठ जाएगी और हम आश्चर्य करेंगे कि क्यों हमने इस संसार में रहते हुए इसे नहीं देखा। मित्रों, अब हम देखते हैं कि ज्योतिषी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे। मित्रों, ज्योतिषियों के आने के बारे में यह एक ऐतिहासिक लेख है। यहां पर ध्यान दीजिए कि वे हेरोदेस राजा के दिनों में आए। एक बात जिसे हेरोदेस नहीं चाहता था वह है प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता, इसलिए ज्योतिषियों का यरूशलेम में आना उसे सचेत करना था। क्या आपका बाइबल कहता है कि देखो पूर्व से 3 ज्योतिषी यरूशलेम में आए? आप कहते हैं नहीं, आपने 3 की संख्या जोड़ दी है। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या यही बात आपको बड़े दिन या क्रिसमस कार्ड के द्वारा नहीं सिखाई गई? मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग क्रिसमस में कहानी को क्रिसमस कार्ड के द्वारा अधिक जानते हैं जितना कि बाइबल से, इसलिए उनके अंदर बहुत सी बातों के विषय में गलत धारणाएं हैं। इस अध्याय में मैं बहुत सी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि बाइबल हमें यह नहीं बताती है कि 3 ज्योतिषी थे। मैं नहीं जानता कि वे कितने थे, लेकिन मुझे संदेह होता है कि क्या 3 ज्योतिषी ही हेरोदेस राजा को परेशान करने के लिए या यरूशलेम को उभारने के लिए काफी थे। मैं यह विश्वास करता हूं कि इसे 300 लोगों ने किया होगा। ये ज्योतिषी जो पूर्व देश से आए थे, स्पष्ट रूप से वे अलग अलग क्षेत्र से आए थे। वे तारों का अध्ययन कर रहे थे और जब उन्होंने इस नए तारे को देखा तब वे एकजुट होकर यरूशलेम में आए। मैं यह नहीं जानता कि वे कितने थे, परंतु मुझे इतना जरूर पता है कि वे सिर्फ 3 ही नहीं थे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि 300 ज्योतिषियों का होना लगभग सही होगा। लेकिन कृपा करके आप यह न कहें कि मैंने कहा है कि 300 ज्योतिषी थे, परंतु ज्योतिषी आए, हम मत्तियुस सुसमाचार 2 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको दंडवत करने आए हैं। मित्रों, वे एक राजा की खोज में थे और यही बात राजा हेरोद को परेशान कर रही थी। उन्होंने कहा, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। यह काव्य में पूर्वी तारा कहलाता है और वास्तव में इस नाम से एक संस्था भी है। उस संस्था की एक महिला ने एक प्रचारक को यह कहते सुना कि वह पूर्वी तारा नहीं था, तो वह बहुत दुखी हुई। यदि उन्होंने पूर्व में उसका तारा को देखा होता और वह पूर्वी तारा होता, तो इन ज्योतिषियों ने भारत या चीन में अपनी यात्रा समाप्त की होती। पर तारा पश्चिम में था और ज्योतिषी पूर्व में थे। तारा पश्चिम में था और उन्होंने उसका अनुसरण किया या पीछा किया, वे पश्चिम में आए न कि पूरब में। पर मेरा प्रश्न है कि संसार में लोगों ने कैसे एक तारे को राजा के साथ जोड़ दिया और कैसे उन्होंने इसराइल के साथ उसकी पहचान जोड़ी। मैं जितना जानता हूं वह यह है कि उस भाग के पूर्व क्षेत्र में लोगों को जो भविष्यवाणी दी गई थी वह बलाम की थी, जिसे हम गिनती की पुस्तक 24 अध्याय उसके 17 पद में पाते हैं। इस बात को याद रखें कि बूढ़े बलाम ने यह भविष्यवाणी इसराइल राष्ट्र को दी थी, जहां पर लिखा है, मैं उसे देखता तो हूं किंतु अभी नहीं, मैं उस पर दृष्टिपात तो करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब में से एक तारा उदित होगा और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा, वह मोआब के मस्तक को चूर चूर कर डालेगा और श्वेत वंशियों को मिट्टी में मिला देगा। यहां पर ध्यान दीजिए कि भविष्यवाणी कहती है कि याकूब में से एक तारा उदित होगा और वह इसराइल राष्ट्र है और इसराइल में से एक राजदंड उठेगा। तारा और राजदंड एक साथ चलते हैं। यही एक स्थान है जहां पर पुराने नियम की भविष्यवाणी में तारा और राजदंड को एक साथ रखा गया है। पूरे देश के ज्योतिषियों के पास ये भविष्यवाणियां थी और इसी कारण से वे रहस्यमय तरीके से पूरे देश से निकलकर राजा को ढूंढने लगे और यह घटना यरूशलेम नगर को और बूढ़े हेरोदेस राजा को परेशानी में डाल दी थी, अर्थात घबरा दी। हम मत्तियुस सुसमाचार 2 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। मित्रों, जब ज्योतिषियों का प्रभावपूर्ण प्रतिनिधि मंडल यरूशलेम नगर की ओर था, जो इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे थे जिससे सारा यरूशलेम घबरा गया था, हेरोदेस इसके बारे में जानना चाहता था। यह हेरोदेस महान था जो बहुत ही अंधविश्वासी व्यक्ति था। और मैं आशा करता हूं कि आपके पास अच्छा बाइबल शब्दकोश होगा और आप अवश्य ही हेरोदेस के परिवार के बारे में समय निकालकर पढ़ेंगे। वे धूर्त लोगों का एक समूह जैसा था जो लगभग डेमेडिसी के घराने के समान थे। यह परिवार पहली शताब्दी का वास्तविक माफिया था और हेरोदेस उन सबों में से सबसे अधिक धूर्त था। वह एक एदोमी था और उसने यह पद रोमी साम्राज्य से प्राप्त किया। वह बिल्कुल भी इसराइल से नहीं था और वह वास्तव में बहुत उत्सुक था उसे ढूंढने के लिए जो उसके राज सिंहासन की बराबरी करने के लिए प्रकट हुआ था। हम मत्तियुस सुसमाचार 2 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब उसने लोगों के सब मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि उसने पूछा नहीं परंतु आज्ञा दी। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ग्रंथ है और उसमें लेख है कि मसीह आने वाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए। एक आश्चर्य की बात तो यह है कि वे उसे बताने में सक्षम रहे। तब हम मत्तियुस सुसमाचार 2 अध्याय उसके 5 और 6 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल का रखवाला होगा। मित्रों, जब हेरोद ने शास्त्रियों से पूछा कि उसका जन्म कहाँ होना चाहिए, तो शास्त्रियों को शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह कहाँ पर लिखा हुआ है, मीका नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में। सच तो यह है कि उन्हें शास्त्र खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह उनके मस्तिष्क में ही था। वे बिना खोले ही बता सकते थे कि कहां पर लिखा हुआ है। वे यीशु मसीह के आने के बारे में सब कुछ जानते थे। परंतु समस्या यह थी कि उनका ज्ञान जीव संबंधी से बढ़कर शैक्षिक था और यह उनके लिए कोई व्यक्तिगत मायने नहीं रखता था। वे समूह के लिए एक नमूना थे जो बाइबल में पाए जाने वाले इतिहास को जानते थे और वे कुछ निश्चित तथ्यपूर्ण सत्य को जानते थे, परंतु ये सब कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई मायने या मतलब नहीं रखता था। जबकि शास्त्री लोग पुराने नियम के शास्त्र के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए हो सकता है कि आप यह सोचते होंगे कि वे ज्योतिषियों के पास जाकर इस प्रकार से कहते होंगे, हमारा आप सबके साथ वहां तक जाना कैसा रहेगा, क्योंकि हम भी मसीहा की राह देख रहे हैं। मित्रों, मुझे आश्चर्य होता है कि आज वास्तव में कितने लोग हैं जो सचमुच में प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं। हम इसके बारे में बातें करते और महान भविष्यवाणियों का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच में उसे अभी देखना चाहते हैं? मान लीजिए कि वो आप जहां पर हैं वहीं आपके सामने प्रकट होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो क्या वह किसी बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं? क्या आप उसे इस प्रकार कहना चाहेंगे कि मेरी इच्छा है कि आप अपनी मुलाकात को किसी और समय के लिए निर्धारित कर दें? मित्रों, हेरोदेस या हेरोद को उसके बारे में शास्त्रियों के द्वारा सूचना मिली। हम मत्ती रचित सुसमाचार 2:7 में पढ़ते हैं, तब हेरोदेश ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर उनसे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। मैं यहां पर एक वाक्य कहने जा रहा हूं जिसे मैं बाद में प्रमाणित करूंगा। तारा आकाश में रात्रि के समय उस समय प्रकट हुआ जब ज्योतिषी यरूशलेम में प्रवेश करने पर थे, तब या इस प्रकार से कहें कि उनके यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले प्रकट हुआ। आप इस बात को ध्यान में रखें कि उन्होंने अपनी यात्रा ऊंटों से की, न कि कोई जेट हवाई जहाज से। मेरा यह मानना है कि वे तारे को देखने के बाद एक साल तक यरूशलेम नहीं पहुंच पाए, या उनके लिए कोई ऐसी छोटी सी बात या क्रिसमस उत्सव को मनाना नहीं था जैसे वे अपनी यात्रा कर रहे थे। तो उनमें एक आशा थी कि हम उसे देखेंगे और भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हेरोदेस ने किस तरह जानकारी हासिल की कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने आकाश में तारे के उपस्थित होने का समय पूछा। और कृपया आप यहां पर ध्यान दीजिए, अपने मस्तिष्क में इस बात को रखें कि यह बाद की कहानी में एक महत्वपूर्ण सत्य ठहरेगा। इस तरह हेरोदेस ज्योतिषियों को बैतलहम भेजते हैं और तब हम मत्ती के 2:8 में आगे पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वह उस पुराने सर्प के समान धूर्त था और हेरोदेस भी बिल्कुल वही था। मान लीजिए कि उसने ऐसा कहा होता कि यदि कोई राजा चारों तरफ से कहीं जन्मा है तो मैं उससे छुटकारा पाने जा रहा हूं, और तब वह बैतलहम में अपने सैनिकों को भेजता है, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वह कभी भी बालक को नहीं पाता, क्योंकि बालक को छिपा दिया गया होता। वह इस चालाकी को अच्छी तरह से जानता था और इसलिए यह एक अच्छा तरीका था कि ज्योतिषियों को जाने दे ताकि वे बालक का पता लगाकर वापस आते समय उसे भी बताए। उसने उनसे कहा कि वह भी जाकर उसे दंडवत करना चाहता है, परंतु वास्तव में वह उसे जान से मार डालना चाहता था। तब हम आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 2:9-10 में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखो जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। मित्रों, अब हम देखते हैं कि तारा दोबारा प्रकट हुआ। मैं सोचता हूं कि वे लोग तारे को बिना देखे ही काफी समय तक यात्रा कर चुके थे। इसे मूर्खता से दिया गया उत्तर समझना चाहिए जो आज इसके बारे में कहते हैं कि वहां पर कुछ तारों का एक जमवाड़ा या गुट था जो एक विशेष समय में ही हुआ था। मित्रों, मत्ती इसे स्पष्ट करता है कि यह तारा बहुत ही असाधारण तारा था। वास्तव में यह एक अलौकिक तारा था, यह चमत्कारी था और हमें इसकी व्याख्या या विवरण को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यह हो सकता है जैसे कि कुछ खगोलज्ञ सोचते हैं कि उस समय आकाश में थोड़े समय के लिए कुछ हुआ, जब वह आया तो आकाश और पृथ्वी दोनों ने उसके इस संसार में आगमन की स्वीकृति दी। मैं सोचता हूँ कि यह सब कुछ हुआ होगा, लेकिन ज्योतिषियों ने अलौकिक तारे को देखा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उससे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मित्रों, जब वे वहां पहुंचे तो यीशु सराय के पीछे गौशाला में नहीं था। बैतलहम नगर में वह बड़ी हलचल बंद हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में वापस जा चुके थे क्योंकि पंजीयन हो चुका था, परंतु यहाँ छोटा बालक है जो नवजात शिशु या नया जन्मा है और उसे लेकर वे वहां से तुरंत नहीं जा सके। संभवतः इस छोटे बालक के साथ यात्रा करना उसके जीवन को जोखिम में डालना होता, इसलिए वे बैतलहम में ही रुक गए और गौशाला से एक घर में आ गए। इसलिए ज्योतिषियों ने उन्हें घर में पाया। फिर से ध्यान दें कि क्रिसमस कार्ड में ज्योतिषी गौशाले में आते दिखाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यदि यूसुफ उस गौशाले को उन्हें नहीं दिखाता तो वे यह भी नहीं जानते कि गौशाला कहाँ पर है। वे घर में आए थे, इसलिए कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब उन्होंने छोटे बालक को मरियम उसकी माता के साथ देखा तो गिरकर उसे दंडवत किया। यही एक समय था जब मरियम को दंडवत किया गया, तो यही वह समय था जब उसे भी दंडवत किया गया, परंतु उन्होंने उसे दंडवत नहीं किया था क्योंकि वे ज्योतिषी लोग थे। उन्होंने यीशु को दंडवत किया और अपने खजानों में से उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मित्रों, उसके दूसरे आगमन के विषय सच्चाइयों का अध्ययन करना बहुत ही रुचिदायक है, जबकि वे सब हम लोगों से संबंधित हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 60 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू ऊँटों की अधिकता से भर जाएगी, मिद्यान और एफा के तथा शबा के सब जवान ऊँट तेरे पास आएंगे, लोग सोना और लोबान लाएंगे और जय जयकार करते हुए यहोवा का गुणानुवाद करेंगे। मित्रों, उसके दूसरे आगमन में कौन सी भेंट छूट गई है? गंधरस। वे गंधरस लेकर नहीं आए क्योंकि वह मृत्यु के विषय बात करती है। जब वह दूसरी बार आएगा तो कुछ भी उसकी मृत्यु के विषय में बात नहीं करेगी। वह एक राजा पैदा हुआ है, लोबान उसके जीवन की सुगंध को दर्शाता है और गंधरस उसके मृत्यु को दर्शाता है। ये सारी बातें उसके पहले आगमन की भेंट में इंगित की गई थी जो उसे चढ़ाए गए थे। जब वह दूसरी बार आएगा तो वह संसार के पापियों के लिए क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा, वह दूसरी बार राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएगा। मित्रों, आज हमारा अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसी तरह हम अगले अध्ययन में भी यीशु मसीह से संबंधित विषयों पर अधिक जानकारी हासिल करेंगे कि वह छोटा बालक किस प्रकार हेरोद के हाथ से बचा लिया गया। वह मिस्र देश को गया, फिर वापस नाजरेत नगर में आया, आदि विषयों पर हम विचार करेंगे। लेकिन आप भी इस विषय पर अवश्य ही विचार करते रहें और अपने मित्रों को भी इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य बताएं, ताकि वे भी इस कार्यक्रम के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो हमें अवश्य लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो इस कार्यक्रम से संबंधित हो तो अवश्य ही पूछें। यदि कुछ समझ में ना आए तो भी आप हमें लिख सकते हैं। प्रभु आप सबको अपने शांति आनंद की भरपूरी प्रदान करे और अपने निकटता में बनाए रखे। प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ते रहें और उसके महान आशीषों को जीवन में प्राप्त करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोता, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।